ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय 22। अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। श्लोक संख्या 32। मेरे पीछे बोलिए, तावन सुतल मध्यस्थान विश्वकर्म विनिर्मित यदाधयो व्याधयश्च क्लमस्तंद्र पराभव नोपसर्गा निवसिता संभवन्ति ममेक्षया। तावन् सुतल मध्यस्ता विश्वकर्म विनिर्मिता यदाधयो व्याधयश्च क्लमस्तंद्र पराभव नोपसर्गा निवसिता संभवन्ति ममेक्षया। शब्दार्थ बोलिए, तावत् जब तक तुम इंद्र के पद पर नहीं हो, सुतलम सुतल नामक लोक अध्यस्ताम वहां जाकर उस स्थान पर अधिकार जमाओ, विश्वकर्म विनिर्मितम विश्वकर्मा द्वारा विशेष रूप से निर्मित यत जिसमें आधयः मानसिक क्लेश व्याधयः शरीर संबंधी कष्ट च भी क्लमः थकान तंद्रा आलस्य पराभवः पराजित होकर न नहीं उपसर्गाः अन्य उपद्रवों के लक्षण निवसताम वहाँ रहने वालों का संभवन्ति संभव होते हैं मम मेरी इच्छया विशेष निगरानी से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। चूंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों थकान आलस्य पराजय तथा अन्य उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहाँ जाकर शांतिपूर्वक रह सकते हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को हम समझेंगे। श्लोक में शब्द किस प्रकार से हैं, ये श्लोक कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कौन बताएगा? वामन देव कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। अनुवाद से जो है कुछ है, ये भ्रम पैदा होता है कि बलि महाराज से बोल रहे हैं, लेकिन श्लोक नहीं, लेकिन विशेष रूप ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से एक जो है बलि महाराज के पक्ष में तर्क रखा था। ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से बलि महाराज के पक्ष में कुछ बात पेश की थी कि इनके साथ आपका जो है बड़ा ही अन्याय हो रहा है, आपकी कृपा तो बहुत होती है भक्तों के ऊपर और ये तो बहुत बड़े भक्त हैं और इनके साथ आपका इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा है? तो ब्रह्मा जी बोल सकते हैं ये बात जो है और कोई तो नहीं बोल सकता कि भगवान के सीधे जो अधीन है वो ब्रह्मा जी हैं, बाकी तो सब ब्रह्मा जी के अधीन हैं और नीचे नीचे हैं, ब्रह्मा जी के जो तुरंत नीचे हैं वो नहीं, भगवान के जो तुरंत नीचे हैं वो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी बोल सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने ये बात जो है उनके पक्ष में, बलि महाराज के पक्ष में ये बोली थी कि इनको आप छोड़ दीजिए, इनको आपने क्यों बांध रख करके रखा है, और उन्होंने इतना समर्पण किया है अपना, इतना बड़ा त्याग किया है ना, तो आपको तो भक्त जो है कुछ पत्ता फल फूल जल भी अगर दें तो उनको भी आप अपना लोक अपना वैकुंठ लोक दे देते हैं, और इनको आपने बांध करके रखा हुआ है, ये क्या आपका कैसा व्यवहार है ना। तो ब्रह्मा जी तो भगवान जो है ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं, और पिछले कई श्लोकों से, ये तो अंतिम श्लोक है भगवान का, उसके बाद अगले श्लोक से भगवान बलि महाराज से बोलेंगे, इंद्रसेन महाराज याही, हे इंद्रसेन महाराज, इसके पहले बड़े कठोर शब्द प्रयोग किए थे बलि महाराज के प्रति, अभी जो है भगवान बलि महाराज को बड़ा सम्मानित शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इंद्रसेन महाराज आप जाइए, आपका कल्याण हो, आपका जो है स्वागत है, आप सुतल लोक में जाइए। लेकिन यहाँ भगवान ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं, है ना, और क्या कह रहे हैं, तावत सुतलम अध्यस्ताम, तावत का मतलब जब तक, तब तक, यावत माने जब तक और तावत माने तब तक, है ना। तो पिछले श्लोक में ये आया था कि ये जो है सावरणी मन्वंतर में इंद्र बनेंगे और मेरे आश्रित रहेंगे। इंद्र बनना बहुत खतरनाक बात है, ये भगवान के आश्रित होकर के इंद्र बनने में बहुत सुरक्षा है। तो भगवान जो है बलि महाराज के बारे में कह रहे हैं कि अगले मन्वंतर में, आठवां मन्वंतर, ये सातवां मन्वंतर चल रहा है, तो एक इंद्र का जो समय होता है वो एक मन्वंतर का होता है ना। तो बलि महाराज ने इंद्र का पद ले लिया था तो वो एक प्रकार से अन्याय था, क्योंकि इंद्र को जो है एक मन्वंतर तक पद मिलता है, इंद्र का पद मिलता है ना। लेकिन बलि महाराज को भी इंद्र बनाया जाएगा, लेकिन अगले मन्वंतर सावर्णी मन्वंतर में बलि महाराज का जो इंद्र पद है वो बुक हो चुका है, निश्चित हो चुका है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी इंद्र बनेंगे तो कोई मतलब इनको कमी नहीं होगी। तावत, तावत का मतलब है कि जब तक ये मन्वंतर चल रहा है, तो वामन देव ये इस मन्वंतर में हुए, ये जो सातवां मन्वंतर चला इसी मन्वंतर में वामन देव हुए, है ना। तो भगवान वामन देव कह रहे हैं कि जब तक ये मन्वंतर चल रहा है तावत, तब तक है? क्या करें, ये बलि महाराज कहाँ रहें, सुतलम अध्यस्ताम, सुतल लोक में रहें, सुतल लोक में रहें। और सुतल लोक कैसा है, स्वर्ग से भी अच्छा है, स्वर्ग से भी ज्यादा इसमें ऐश्वर्य है, सुविधा है ना। विश्वकर्म विनिर्मितम, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है वो सुतल लोक। यद आधयो व्याधिश्चा, नहीं है जहां पर आधि और व्याधि नहीं है। आधि का मतलब है मानसिक बीमारियां, इस समय कितनी मानसिक बीमारियां हैं, तो जहां पर मानसिक बीमारी कोई ही नहीं, तो मेंटल हॉस्पिटल नहीं, जहां पर भगवान बलि महाराज से कह रहे हैं क्या वहां जाए, वहां पर कोई मेंटल हॉस्पिटल है ही नहीं, आधि नहीं है और व्याधि नहीं है और दूसरे हॉस्पिटल भी नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, मेंटल और फिजिकल, फिजिकल हॉस्पिटल भी नहीं है, शारीरिक अस्पताल भी नहीं है, मानसिक अस्पताल नहीं है, शारीरिक अस्पताल भी नहीं है, तो शरीर की भी कोई बीमारियां नहीं है। तो सुतल लोक में जो है एक तो कमी यह है कि भाई कोई मानसिक अस्पताल नहीं है, और दूसरी कमी क्या है कि शारीरिक अस्पताल नहीं है, है ना, कमी है, गुण है, गुण है कि वहाँ है ही नहीं कोई बीमारी नहीं किसी को, है ना। आधो व्याधिस्ट क्लमस, क्लमस का मतलब है थकान, जहाँ थकान भी नहीं होती है, आप थक जाते हैं बड़ी जल्दी, है ना, तो हम बैठे बैठे थक जाते हैं, सुनाते सुनाते सकते हैं, आप लोग सुनते सुनते थक जाते हैं, तो वहाँ पर थकान नहीं है और तंद्रा नहीं है। तंद्रा का मतलब बैठे बैठे नींद आती है, तो क्या होता है इसे तंद्रा बोलते हैं, है ना। तो ये भी नहीं है, निद्रा है लेकिन तंद्रा नहीं। जब आप सोएंगे तो आपको नींद आएगी, आप सोना चाहेंगे तो नींद आएगी, है ना। लेकिन जब आप नहीं सोना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको नींद आती है, तो उसे तंद्रा बोलते हैं। तो तंद्रा नहीं है। अगर आपकी काम करने की इच्छा है, सोने की इच्छा नहीं है, तो करो काम, बड़े कोई बाधा नहीं आएगी, है। तंद्रा नहीं है वहाँ पर, और पराभव नहीं है। पराभव, पराभव को कह सकते हैं डिप्रेशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है? अवसाद, अवसाद नहीं है, है ना, डिप्रेशन। तो पराभव नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। नोपसर्ग अनिवसताम, ये सब उपसर्ग यानी जो बीमारियाँ हैं या जो बाधाएँ हैं, नहीं है। निवसताम, जहाँ के निवास करने वालों के लिए ये बाधाएँ नहीं हैं। संभवंती ममेक्षया, मेरी इच्छा से ये सब होते ही नहीं वहाँ पर। तो बलि महाराज वहाँ पर रहेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, है ना, कि बलि महाराज के साथ मेरा जो कठोर व्यवहार है, तो वो तो जो है केवल दिखाने के लिए है, केवल ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, या अंदर से मैं बहुत कोमल हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, है ना, वामन का मतलब भी मैं विचार कर रहा था, वामन इनका नाम है ना, तो वाम का मतलब होता है उल्टा। कोई व्यक्ति अगर उल्टा व्यवहार करे तो उसको वाम बोलते हैं, स्त्री उल्टा व्यवहार करे तो वामा बोलते हैं, वामा स्त्री है ना, और वाम जो है पुरुष को बोलते हैं, तो मतलब उल्टा व्यवहार करे। तो वामन और ना, वाम ना, ना का मतलब नहीं है, जो वाम नहीं है, है ना। तो ऊपर से दिखाई पड़ते हैं बड़े वाम, यानी कठोर दिखाई पड़ते हैं, अंदर से कठोर नहीं है, बहुत कोमल है। तो वामन देव जो है ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हैं कि आपको जो बड़ी निराशा हो रही है कि मैं बड़ा कठोर व्यवहार कर रहा हूँ बलि महाराज के साथ, तो ऐसी बात है नहीं, ये तो केवल परीक्षा के लिए मेरा व्यवहार था, और ये परीक्षा में 100% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, 100% इनके नंबर आए हैं परीक्षा में, 100% नंबर आए हैं बलि महाराज के, हैं। अब इनको जो है बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, और मैं इनको बहुत सुविधा और सब कुछ प्रदान करने वाला हूँ। तो भगवान ये बात कह रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्वकर्मा स्वर्ग लोक के उच्च प्रासादों के इंजीनियर या शिल्पी हैं। प्रासाद का मतलब जानते क्या है, महल, हाँ, प्रसाद नहीं है ना। प्रासाद का मतलब है महल। तो स्वर्ग लोक के उच्च प्रासादों के इंजीनियर या शिल्पी हैं। तो विश्वकर्मा जो है स्वर्ग लोक के शिल्पी हैं, है ना, और ये तो स्वर्ग लोक नहीं है, ये बिल स्वर्ग हैं जो पृथ्वी के नीचे हैं। ये सात जो स्वर्ग हैं ये पृथ्वी के नीचे हैं, है? जो स्वर्ग ऊपर है जहाँ देवता लोग रहते हैं, तो वो स्वर्ग तो ऊपर हैं, और वहाँ पर सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन सूर्य का उदय और अस्त होता है तो वो जो दिन और रात होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। हमारे उत्तरायण के जो 6 महीने हैं, इतना बड़ा उनका दिन होता है, आप समझे। सूर्य का उदय और अस्त के बीच में जो समय होता है, हमारे उत्तरायण के 6 महीने जब बीतते हैं तो उनका जो है सूर्योदय से सूर्यास्त होता है, और फिर सूर्यास्त से सूर्योदय की जो रात होती है वो दक्षिणायन के 6 महीने के बराबर है, तो स्वर्ग में। लेकिन सूर्य का उदय और अस्त है, लेकिन जो नीचे हैं पृथ्वी के नीचे हैं सात बिल स्वर्ग, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, दिन रात का कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमेशा प्रकाश रहता है। जैसे आप लोग जाते हैं ना बेसमेंट में, है, तो आपको दिन रात का पता नहीं चलता है, लेकिन लाइट रहती है, है ना। और वो लाइट कैसे होती है, ट्यूबलाइट सब जो है बिजली के तारों से जो है ये कनेक्शन लगा हुआ है, लाइट उस तरह से बनती है। लेकिन सात जो बिल स्वर्ग हैं, इनमें जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। वहाँ जो सर्प हैं, वहाँ रहने वाले जो सर्प हैं, उनके फणियाँ, उनके फणों में जो मणियाँ हैं, उनसे प्रकाश होता है। वहाँ जो सर्प रहते हैं, उनके फणों में जो मणियाँ हैं, उनसे प्रकाश होता है, और खूब प्रकाश होता है, कोई कमी नहीं होती प्रकाश की, कहीं अंधेरा नहीं रहता। तो भगवान कह रहे हैं कि विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ है। तो विश्वकर्मा तो स्वर्ग में बनाते हैं, जैसे इंद्र की अमरावती है, इंद्र की अमरावती है वो विश्वकर्मा ने बनाई है ना, देवताओं के शिल्प हैं। और जो सात स्वर्ग हैं, जो बिल स्वर्ग हैं, यहाँ के जो शिल्पी हैं असुरों के शिल्पी हैं, मैदानों हैं, असुरों के शिल्पी हैं मैदानों, तो मैदानों जो है निर्माण करते हैं। इन कुछ विशेष जो है निर्माण कार्य विश्वकर्मा ने अगर किया है तो भगवान के ममेक्षा मेरी इच्छा से किया है। तो यहाँ पर कुछ कार्य जो है विश्वकर्मा ने जो किया है वो भगवान की इच्छा से निर्माण कार्य किया है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो विश्वकर्मा के द्वारा है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि विश्वकर्मा स्वर्ग लोक के उच्च प्रासादों के इंजीनियर या शिल्पी हैं, चूंकि इन्हें बलि महाराज का आवास बनाने के लिए काम पर लगाया गया था, अतः स्वतंत्र लोक के महल स्वर्ग लोक जैसे अवश्य होने चाहिए थे। बलि महाराज के लिए तैयार कराए गए इस स्थान का एक अन्य लाभ ये था कि उन्हें वहाँ ना तो किसी बाहरी आपत्ति से विचलित होना पड़ेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा वहाँ पर, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। स्वर्ग में तो बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं, स्वर्ग में देवताओं के स्थान में बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं, मतलब बहुत से असुर आते हैं और जो है आक्रमण करते हैं, तो कई मतलब बाधाएं हैं स्वर्ग में, लेकिन यहाँ कोई बाधा नहीं है। भगवान कह रहे हैं स्वतंत्र लोक में कोई बाधा नहीं है, न ही उन्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश सताएगा। स्वतंत्र लोक के अद्वितीय लक्षण है जहाँ बलि महाराज रहेंगे। आगे वैदिक ग्रंथों में हमें विभिन्न लोकों के वर्णन मिलते हैं जहाँ अनेक अनेक प्रासाद हैं जो धरालोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ हैं। प्रासाद यानी महल हजारों गुना श्रेष्ठ हैं वहाँ की, है ना। जब हम प्रासादों की बात करते हैं तो स्वभावतः उसमें बड़े बड़े शहरों तथा नगरों का भाव निहित होता है। दुर्भाग्यवश जब आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चट्टानों तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। तो प्रभुपाद ने एक द्वितीय दुर्भाग्य की बात है कि चट्टान और बालू के अलावा कुछ नहीं मिलता। वास्तव में वो जान ही रहे वहाँ, लेकिन दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं कि हम गए और वहाँ पर कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं वास्तव में वो जाते नहीं है वहाँ, जैसे अपोलो है? कौन सा अपोलो, 11वां अपोलो गया था चंद्रमा, अपोलो 11 चंद्रमा में गया था, तो 1971 की बात है चंद्रमा में गया था। तो सब लोग जो है बड़ा चकित हो रहे थे, भाई आज का विज्ञान कितना उन्नत है, चंद्रमा में पहुंच गए, चंद्रमा में पहुंच गए, है ना। एक उस समय केवल प्रभुपाद ही हंस रहे थे, प्रभुपाद ही केवल हंस रहे थे कि ये लोग नहीं गए, ये लोग नहीं जा सकते चंद्रमा में, चंद्रमा सूर्य से भी ऊपर है, सूर्य की ऊंचाई 1 लाख योजन है और चंद्रमा की ऊंचाई 2 लाख योजन है, ये लोग नहीं गए हैं। और बाद में फिर पता भी चला कि ये लोग नहीं गए और झूठा इन्होंने वो जो वो कर के शूटिंग कर ली नहीं, तो वो एरिजोना एक अमेरिका में स्थान है वहाँ की शूटिंग कर दी और दिखा दी कि हम चंद्रमा में गए हैं और वहाँ पर वही है, केवल बालू है, पत्थर है, कुछ नहीं। जैसे कहानी है लोमड़ी की कि लोमड़ी उछलती रही बहुत और उसको अंगूर नहीं मिले, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि अंगूर खट्टे हैं। तो चंद्रमा में बहुत अपोलो गए, उछल उछल करके गए, लेकिन चंद्रमा में तो पहुंच नहीं पाए, तो फिर दिखा दिया कि चंद्रमा में कुछ नहीं है, वो क्या है, बालू है, पत्थर है, कुछ नहीं है। तो ये समस्या है। तो प्रभुपाद ने 1965 में ही श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के तात्पर्य में लिखा था कि वो चंद्रमा में नहीं पहुंच सकते, और मैं उस समय सन 78 में IIT कानपुर में था, तो वहाँ की लाइब्रेरी में प्रभुपाद के 3 ग्रंथ थे जो प्रभुपाद ने उस समय छपवाए थे, चौड़ी बाजार में, तो उसमें प्रभुपाद का नाम नहीं था, इस्कॉन का नाम नहीं था, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का नाम नहीं था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो प्रभुपाद तो शरीर भी छोड़ चुके, लेकिन 78 में मैं जो है वो किताबें पढ़ रहा था, तो मैं मतलब इस्कॉन को नहीं जानता था, मुझे कोई सूचना नहीं थी इस्कॉन की, लेकिन प्रभुपाद ने ही रखवाई ये किताबें IIT कानपुर की लाइब्रेरी में। तो 78 में मैं जब पढ़ रहा था तो मैं ये सोचता था कि कोई मतलब बहुत साहसी व्यक्ति है जो कि इतना लिख रहा है वैज्ञानिकों के विरुद्ध और मायावादियों के विरुद्ध लिख रहा है, कोई बहुत साहसी व्यक्ति है जिसे कोई नहीं जानता, जबकि मैं नहीं जानता था और बाकी दुनिया जानती, मैं सोचता कोई जानता नहीं है, इतना साहसी व्यक्ति है ये। लेकिन जब प्रभुपाद ने लिखा कि लोग चंद्रमा में नहीं पहुँच सकते, तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि ये तो गलत हो गई प्रभुपाद की बात, ये तो प्रभुपाद की बात गलत हो गई, 71 में तो चंद्रमा में पहुँच चुके हैं। लेकिन बाद में फिर वो सब कुछ जो है वो हुआ, सब खुलासा हुआ कि लोग चंद्रमा में गए नहीं, तो झूठी कहानी बनाई है, झूठी शूटिंग कर दी है ना। तो ये सब जो है मतलब प्रभुपाद में कोई भ्रांति है ही नहीं, प्रभुपाद पहले से ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि वो लोग नहीं गए। और प्रभुपाद की इस बात से कई भक्त जो है इस्कॉन छोड़ के चले गए कि प्रभुपाद कैसे कह रहे हैं ये चंद्रमा में नहीं गए। तो प्रभुपाद में कोई भ्रांति नहीं है ना। तो प्रभुपाद जो यहाँ पर ये लिख रहे हैं, दुर्भाग्यवश जब आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चट्टानों तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, ये दुर्भाग्य की बात है ना। तो अपना दुर्भाग्य वो बताना नहीं चाहते कि वो पहुंच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते हैं, तो अपने दुर्भाग्य को छिपाने के लिए वे जो झूठी खबर देते हैं कि वहां पर चट्टानों और बालू के अलावा कुछ नहीं है। जैसे पानी के अंदर भी, पानी के अंदर हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई जीवित रह सकता है, पानी के अंदर आप अपने आप से क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई जिंदा रह सकता है, लेकिन कितने जीव जंतु हैं जो पानी में बिना किसी बाधा के रहते हैं और जीवित रहते हैं और खूब बढ़िया श्वास भी लेते हैं, अच्छी प्रकार से श्वास भी लेते हैं, कितने जीव जंतु हैं। तो फिर जो दूसरे लोग हैं वहाँ पर जीव जंतु क्यों नहीं होंगे, है ना। एक सामान्य तर्क है, आप खुदाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर भी बहुत से जीव जंतु मिलते हैं, हवा में भी जीव हैं, बहुत से जीव हैं, है ना। तो फिर अन्य लोगों में जीव जंतु क्यों नहीं होंगे। तो जैसा वर्णन है हमारे शास्त्रों में, अन्य लोगों में जो है और ज्यादा जीवन की सुविधाएं हैं और जीवन की अवधि बहुत ज्यादा है, और आप अपनी टेक्नोलॉजी से उनको नहीं जान सकते हैं क्योंकि आपको जो है अधिकार नहीं दिया गया है। आपको अधिकार दिया गया है पृथ्वी में रहने का, तो आप दूसरे लोकों में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, भले ही वे अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करते रहें, ये तुच्छ यात्राओं का आयोजन है, उनकी यात्रा क्या है, तुच्छ है, कोई महत्व नहीं है इनकी यात्रा का, किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा न उन्हें अन्य लोगों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। उपाध्याय क्या कह रहे हैं, है? वैदिक शास्त्र का साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा, बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि वो जो सूचनाएं देते हैं है? वो विश्वसनीय नहीं है, और ना अन्य लोगों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा कि वो गए वहाँ, जाए जा चुके वहाँ, तो वो श्रेय प्रदान नहीं करेगा। अब चूंकि सरकार के द्वारा इन वैज्ञानिकों को बहुत धनराशि मिलती है नियमित रूप से, तो वे जो है अपनी कुछ ना कुछ योगदान बताने के लिए कि हम कर रहे हैं, हम खाली पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपने निष्कर्ष देते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, और मूर्ख बनाते रहते हैं। तो स्वाभाविक है, सरकार से हमको बहुत पैसा मिलता है, तो अपनी लज्जा छिपाने के लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ ना कुछ बातें बनानी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है भगवान बलि महाराज के लिए ये आदेश दे रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत पांचवें स्कंद में इन लोगों का विस्तार से वर्णन है, जो सात बिल स्वर्ग हैं इनका विस्तार से वर्णन है, तो मैं उसमें से कुछ पढ़ूंगा। जो पृथ्वीलोक है उसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सप्त पाताल भी बोलते हैं या सप्त बिल स्वर्ग बोलते हैं। पाताल सातवां है, लेकिन सातों पाताल भी कभी कभी कहा जाता है सप्त पाताल हैं, या कभी बिल स्वर्ग भी कहे जाते हैं। ये बिल स्वर्ग हैं, है ना, तो मतलब विवर हैं पृथ्वी के अंदर जो बिल बने हैं उनमें ये स्वर्ग हैं, है ना। तो उसमें जो एक एक करके सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अतल पृथ्वी के नीचे अतल है, उसके नीचे अतल वितल, वितल के नीचे सुतल है। तो सुतल लोक के लिए वो बता रहे हैं कि वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, है ना। तो अभी आठवें स्कंद में भगवान कह रहे हैं रहेंगे जाएंगे वहाँ, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जिस समय कह रहे हैं उस समय तो बलि महाराज रहते ही, है ना। तो वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात है, बहुत पवित्र राजा। असुर लोग जो है बिल स्वर्ग में जाते हैं। ये असुर कैसे होते हैं, पुण्यात्मा तो जाते हैं ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन बिल स्वर्ग में कौन जाते हैं, जो पुण्यात्मा है लेकिन भगवान के विरोधी हैं, जैसे साम्यवादी। साम्यवादी जो है नास्तिक होते हैं, लेकिन वैसे उनका परोपकार का भाव रहता है, तो परोपकार के भावना में वो काफ़ी त्याग करते हैं। तो ऐसे असुर लोग जो है पुण्यात्मा जो होते हैं लेकिन भगवान के विरोधी होते हैं, लेकिन पुण्यात्मा है तो वो जाते हैं इन नीचे के लोगों में। लेकिन जो वैदिक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो पुण्य करते हैं वो ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं, तो वहाँ भगवान का संबंध भी बना है, देवताओं का भगवान से संबंध बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो नीचे के स्वर्ग हैं तो यहाँ पर इन लोगों का भगवान से संबंध नहीं बना हुआ है। लेकिन एक बलि महाराज ऐसे हैं जो सुतल लोक में है और भगवान से संबंध का बना हुआ है। तो इसमें लिखा है कि जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात है, बहुत पवित्र राजा है। बाकी जो लोग होते हैं बिल स्वर्ग में तो वे जो है भगवान से बिल्कुल कटे हैं, भगवान से कटे हैं, लेकिन उनके पुण्य है तो पुण्यों को भोगते हैं, लेकिन भगवान से कट करके रहते हैं। और स्वर्ग में क्या होता है कि स्वर्ग में व्यक्ति जब रहता है तो उसके जैसे पुण्य क्षीण होते हैं तो उसका उसको पता चलता रहता है कि पुण्य क्षीण हो रहे हैं, उसका पता चलता है। जैसे माला है तो माला तभी मुरझाती है जब पुण्य क्षीण होते हैं, तो मुरझाती जाती है और फिर स्वर्ग से वो नीचे गिरते हैं। हालांकि ये भी बड़ी कष्टदायक घटना है, स्वर्ग से नीचे वो जो है गिरते हैं और फिर वर्षा के द्वारा वे जमीन में आते हैं और उन बीजों में उनकी आत्मा आती है, जो कि जिनके घर में उनको जन्म लेना है उन मनुष्यों के घर में वो बीज के रूप में जो है वो आते हैं। और वो मनुष्य जब खाते हैं उस अन्न को तो उनके शरीर में वो जो है वो वीर्य का जो है आश्रय लेकर के फिर वो जो है स्त्री के उदर में जाते हैं। तो स्वर्ग से गिरने की ये विधि है। लेकिन जो नीचे के सप्त पाताल हैं वहाँ इस प्रकार से गिरना नहीं होता है, वहाँ पर तो सुदर्शन चक्र है और वो सिर काट देता है, वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, ना कोई बुढ़ापा है ना मृत्यु है, कुछ नहीं है। ये सुदर्शन चक्र जो है सिर काट देता है उनके, और बिना किसी पूर्व सूचना के सिर काट देता है। तो इतना सब होने के बावजूद भी जो है बड़ी भयानक स्थिति है, स्वर्ग से गिरते हैं, ये भी दुर्घटना है, स्वर्ग से गिरना भी एक बड़ी दुर्घटना है, लेकिन ये और भी ज़्यादा खराब स्थिति है कि भगवान का चक जो है एक बार में सिर काट देता है, तो और खराब स्थिति है। तो कुछ मामलों में स्वर्ग से ज़्यादा इनको जीवन की सुविधाएं प्राप्त हैं, है ना। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु तो भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल तीन पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छलकर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उनका राज्य लौटा दिया। राज्य लौटा दिया मतलब तीनों लोगों का राज्य तो ले लिया क्योंकि इंद्र का था, लेकिन राज्य लौटा दिया मतलब स्वतल लोग दिया, और इंद्र से भी ऐश्वर्यमान बना दिया। आज भी स्वतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तो स्वतल लोक में बलि महाराज हैं एकमात्र ऐसे जो भक्त हैं, और बाकी सब कौन हैं, अभक्त हैं, असुर हैं, परसों के राजा हैं। तो इसमें भी आगे के श्लोक में आएगा, क्योंकि असुर लोग तो जो है भक्त के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, तो भगवान बलि महाराज को कहेंगे कि आपकी रक्षा में मेरा सुदर्शन चक्र रहेगा, और किसी ने कुछ थोड़ी सी आवाज़ उठाई तुरंत क्या होगा, गला कट। सुरक्षा भी बड़ी अच्छी है, सिक्योरिटी जितना खतरा है उतनी अच्छी सुरक्षा भी है। वासुर लोग तो बहुत उल्टे हैं, तो बलि महाराज को भगवान ने जो है अपनी इतनी बढ़िया सुरक्षा दी है कि जहाँ कुछ उल्टा किसी ने जो है आवाज़ उठाई तुरंत कट, एक सेकंड में कट हो जाएगा, गर्दन अलग, चक्र जो है भगवान का बलि महाराज की रक्षा में रहता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान उनको राज्य लौटा दिया, इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया, आज भी स्वतः लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। हे राजन, बलि महाराज ने श्री भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये नहीं समझना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति है उसका इतना ही फल है, ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा क्या होती है उसको समझो। अगर कोई कहे कि बलि महाराज ने इतना दिया तो इसके बदले में भगवान ने दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, तिनका भी नहीं है जो भगवान ने दिया। भगवान की कृपा क्या है भक्तों के साथ में कि भगवान अपना जो है कुछ, भगवान भी ऐसे हो जाते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए, भगवान इतने समर्पित हो जाते हैं भक्त को, भगवान इतने निकट आ जाते हैं भक्त के कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं इसके बदले में तुम्हें देने के लिए, भगवान भी ऐसे हो जाते हैं, है ना। वो प्रेम भगवान का जो है भक्त को प्राप्त होता है, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है जो स्वतः लोग प्राप्त हुआ, तो ये नहीं सोचना है कि भक्ति का जो है कि ये फल है, भक्ति का फल तो प्रेम है, भगवान का प्रेम, है ना। तो हाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीव आत्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उनके आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। हाँ, जितने जीव भगवान के दिव्य गुणों पर रीझ कर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था, वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुले जाते हैं, वो भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता तो मुक्ति का द्वार भी अपने आप खुल जाता है। तो भक्ति का ये भी फल नहीं है कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति का द्वार तो अपने आप खुल जाता है उसके लिए, तो ये कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो भक्ति का ये फल नहीं है मुक्ति प्राप्त होना, स्वर्ग प्राप्त होना, मुक्ति प्राप्त होना, ये भक्ति का फल नहीं है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेम बस शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु कभी गलती से ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। यदि भूख से व्याकुल होने, सुनिए बड़े ध्यान से, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अभी सुतलोक का वर्णन कर रहे थे, लेकिन सुतलोक के वर्णन में वो बलि महाराज की ही महिमा का जो है वर्णन कर आ गए, उसी में आ गए। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है, कृष्णा बोल दिया, इच्छा से या अनिच्छा से भी बोल दिया, कैसे, भूख से व्याकुल हो कृष्णा भूख लग रही है बोल दिए, या गिरा तो कृष्णा, चोट लगे कृष्णा अगर बोल दिया, इच्छा से अनिच्छा से बोल दिया, तो सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन कृष्णा इच्छा अनिच्छा से भी बोलने से कितना बड़ा लाभ है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। भगवान तो बिक जाते हैं, दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं, वे उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। यहां तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी और जैसा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, ये कृपा नहीं समझना, ये भगवान की ये कृपा है ना? क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेम भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम ये होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। जब श्री भगवान बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति ना सोची, भगवान को कोई युक्ति नहीं सोची, उनका सर्वस्व लेना था, कोई युक्ति नहीं सोची, क्योंकि अदिति माता ने व्रत किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि उनको देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, उनके पुत्र हैं देवता, देवताओं को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और असुरों असुरों के हाथ से मेरे पुत्र देवताओं को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने अदिति माता से कहा था कि वो पराजित नहीं हो सकते, असुरों का भी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि वे ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा एक काम तो जरूर करूँगा कि तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग दिला दूँगा किसी प्रकार से, असुरों को पराजित किए बिना तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग दिला दूँगा। तो यहाँ लिखा है, जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व लेने की कोई युक्ति ना सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इसलिए इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बच रहा, किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। क्यों संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि तीन पग तुमने पूरे नहीं किए, मैंने एक पक्ष से पृथ्वी नाप ली, दूसरे पक्ष से अंतरिक्ष और स्वर्ग नाप लिया, तो तीनों लोग तो मैंने दो कदम में नाप लिए, अब तीसरा कदम तुमने नहीं दिया है, तो बलि महाराज ने कहा फिर मैं अपना शरीर देता हूँ, तीसरे कदम में आप मेरा शरीर ले लो, तो शरीर को बांध लिया भगवान ने कि तुम्हारा शरीर मैंने ले लिया, अब तीन पग पूरे हुए हैं मेरे। और बलि महाराज कहते मैंने आपके तीन पग पूरे कर दिए, और भगवान कहते तुमने तीसरा पग मेरा पूरा नहीं किया तो मैंने तुमको बांधा है, और बलि महाराज कहते आपने मुझे बांधा है तो मेरा तो तीन पग तो पूरे हो गए। तो किंतु भगवान ने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था, उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। बलि महाराज क्या बोले सुनो, धिक्कार है स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है, धिक्कार है स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है, क्योंकि स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए भगवान ने बलि महाराज से स्वर्ग छीना था है? और बलि महाराज को बांध करके अंधेरे में डाला है। तो बलि महाराज क्या कह रहे हैं, इंद्र का कितना दुर्भाग्य है, वो अपना दुर्भाग्य नहीं कह रहे हैं, इंद्र का कितना दुर्भाग्य है, धिक्कार है। स्वर्ग राजा इंद्र कितना दयनीय है, अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर और बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। कि भगवान को उसने इस काम में लगाया कि मुझे स्वर्ग चाहिए, बृहस्पति का शिष्य होने के बावजूद भी कितना अज्ञान भरा है इंद्र के अंदर। भगवान को किस काम में लगाया, स्वर्ग पाने के लिए भगवान को अपने काम में लगाया, अपनी सेवा में लगाया उसने। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, इंद्र के गुरु बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी कि भगवान से क्या लाभ उठाना चाहिए। भगवान वामनदेव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान ना मांगा। भगवान की सेवा नहीं मांगी, क्या मांगा, आप मेरी सेवा करो, मुझे स्वर्ग चाहिए। इंद्र ने भगवान को अपनी सेवा में लगाया स्वर्ग पाने के लिए। जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा मांगते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो ये क्या है, ये धिक्कार की बात है, ये बड़ी निंदा की बात है इंद्र के लिए। बलि महाराज कह रहे हैं, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान ना मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। मेरे द्वार पर भेजा कि बलि से भिक्षा मांगो और मुझे स्वर्ग उनसे लेकर के मुझे दे दो। तो भगवान को भिक्षा कार्य में लगाया, मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए भगवान आए। तीनों लोगों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, तीनों लोगों का राज्य तो बेकार है। बलि महाराज कहते तीनों लोगों का राज्य अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे, वो एक मनमंत्र तक ही चलता है। एक मनमंत्र यानी 30 करोड़ साल, उसके बाद फिर अंधेरी रात। एक मनमंत्र के लिए मांगा, भगवान से अगर मांगो कुछ है तो हमेशा के लिए मांगो, स्थाई चीज मांगो, जो अनंत काल का एक क्षुद्र अंश है। 30 करोड़ साल क्या होते हैं अनंत काल की तुलना में। तो बलि महाराज ने इस प्रकार से इंद्र की निंदा की, और वो बंधे हुए हैं और इंद्र को जो है स्वर्ग प्राप्त हो गया है, और बलि महाराज ये बोल रहे हैं कि बड़े निंदा की बात है, इंद्र कितना मूर्ख है, कितना ज्ञानी है। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना हित पहचाना। प्रहलाद के पुत्र है ना बलि महाराज, उनके पिता हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। भगवान नरसिंहदेव ने क्या, जो हिरण्यकश्यपु का राज्य था वो प्रहलाद को दे दिया और मुक्ति भी देना चाहा, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। नहीं नहीं, इसके भक्ति के बदले मुझे ये नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, भक्ति के बदले में मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुक्ति और भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हैं, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है। फलस्वरूप कर्म और ज्ञान के फलों को ना स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा, आपके सेवक की सेवा मांगी। प्रहलाद महाराज ने भगवान से क्या मांगी, भगवान के दासों की सेवा मांगी, है ना। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अभी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, हमारे जैसे पुरुष यानी असुर भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान की कृपा का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं, या असुर लोग भी कैसे समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी महाभागवत हैं, बलि महाराज भी महाभागवत हैं, 12 महाभागवत हैं, उनमें से एक बलि महाराज भी हैं, एक सुखदेव गोस्वामी भी हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोगों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं, उनके द्वारपाल बने। भक्ति का ये फल है कि भगवान सेवक बन जाते हैं अपने भक्त के, भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। भक्त भगवान की सेवा मांगता है तो भगवान भक्त की सेवा मांगते हैं। आश्चर्य, जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया, रावण आया था सुतल लोक में बलि महाराज के ऊपर विजय पाने के लिए, तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर फेंका रावण को। रावण को जो है एक पैर के अंगूठे से उसको जो है उछाला तो सीधे लंका में गिरा। वो लंका से आया था, लंका से आया था। लंका से आया था रावण, तो बलि महाराज के सुतलोक में जब आया था तो वो पासे खेल रहे थे, तो पासा जो है बलि महाराज को पता नहीं चला कि रावण आया है, और रावण भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो देख रहा था बलि महाराज को, तो पासा जो है गिर गया जमीन में, तो रावण उठाना चाहा तो पासा नहीं उठा पाए, रावण बलि महाराज का पासा नहीं उठा पाए। तो फिर वो बोला रावण कि मैं तो आप पर विजय पाने आया था, लेकिन मैं तो पासा भी नहीं उठा पाया, आप तो बहुत बलवान हैं, आप तो बहुत बलवान हैं। इस तरह से बलि महाराज से बातचीत करके जब बाहर निकला तो वामन देव ने कहा कि अब तुमको जो है, अब आने का जितना कष्ट आया है अब जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, तुमको भेज देता हूँ सीधे बिना कष्ट के। तो एक लात मारी तो उसको जो है लंका भेज दिया सीधे उछाल करके। तो यहाँ लिखा है कि बलि महाराज के वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र और कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंध में करूंगा, जो अभी चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो इस तरह से कुछ है, हमने चर्चा की है और समय भी अब हो चुका है, फिर भी एक दो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी, आप इनको दो, पहले इनको दो।
हरे कृष्ण भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने क्लास थी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पिल स्वर्ग में आपने बताया कि वहाँ पर मृत्यु या जो बुढ़ापा है वो नहीं रहते, पर गीता में भगवान बोलते हैं अभ्रम भवनाल लोका, इस प्रकार से कि ये भौतिक जहाँ पूरा मेटेरियल एग्जिस्टेंस में जो है ये चारों चीज़ें रहती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इस बात को कैसे समझें?
भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के दुख दोषों को हमेशा देखना चाहिए। तो ये 84 लाख योनियां हैं यहाँ पर जो है इस पृथ्वी में, ये जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के दुख और दोष हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ अगर ये दुख दोष नहीं भी हैं तो भी फिर गिरना पड़ेगा, छीने पुण्य मरते लोकम विशन्ति, फिर आएंगे इसी में, तो फिर लाभ क्या हुआ, ठीक है ना। तो आप बिल स्वर्ग में जाते हैं या ऊंचे स्वर्ग में जाते हैं, किसी भी स्वर्ग में जाते हैं, आप ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्म लोक से भी आपको पुनरागमन होगा, आपको वापस आना पड़ेगा, तो इसी जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में आपको आना पड़ेगा। माम अपेते तो कौन थे पुनर्जन्म न वेदते, लेकिन मेरे पास आने से पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो पुनर्जन्म ही जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है, ठीक है ना। हाँ जी,
हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आप बता रहे थे कि जब स्वर्ग से जीव आता है तो वर्षा के रूप में आता है, तो बाकी जो योनि में पेड़ पौधे के योनि में जीव योनियों में रहता है तो वो कैसे कैसे वो किस प्रकार
से? वे पेड़ पौधे वो तो इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं कर्म के अनुसार, यमराज के पास जाते हैं और जो यमराज हैं वो निश्चित करते हैं किसको किस योनि में जाना है, तो उसको उसी प्रकार का सूक्ष्म शरीर दे देते हैं और फिर जो है वो उस शरीर में जाता है। जैसे किसी कुत्ते का जन्म मिलना है तो यमराज कहते हैं तुम कुत्ता बन जाओ, तो सूक्ष्म शरीर उसका कुत्ते का बन गया, अब वो जो है कुत्ते के वीर्य के सहारे वो कुतिया के गर्भ में जाता है। इस प्रकार से वृक्ष योनि कोई भी योनि है तो यमराज उसके कर्म के अनुसार निश्चित करते हैं।
कुछ मेरा ये था कि अगर जीव नीचे से आ रहा, नरक तो नीचे है, नीचे से आ रहा तो फिर कैसे वो मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त कर पाएगा?
नरक नरक अलग है और ये बिल स्वर्ग अलग है, ये 7 बिल स्वर्ग ही अलग हैं और नरक अलग है। नरक से नरक में भी जब कोई व्यक्ति भोग लेता है अपने पापों को तो फिर यमराज के जो है निर्णय के अनुसार उसको पशु पक्षी जो भी शरीर प्राप्त होना है उसमें वो जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार मिल जाता है और वो आता है। तो नरक से भी मनुष्योनि मिलना दुर्लभ है, वो अपने और भी जो कुछ पाप जो बचे हैं उनको भोगने के लिए वो जो है पशु पक्षी की योनि में आता है, और जब पाप पुण्य का लगभग संतुलन हो जाए तब मनुष्य का शरीर मिलता है। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधिका रमन सुगत जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव और गौरताई कृष्ण बलराम की जय हो।